ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के परिणामों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
सुर्खियों में कार्यक्रम में सबसे पहले जान लेते हैं इस समय का ताजा हाल। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। उसने अब तक प्राप्त परिणामों के अनुसार पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। उधर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जीत की ओर बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के अब तक प्राप्त नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 87 सीटें जीत चुकी है और 49 पर आगे चल रही है। शिवसेना SHS ने 42 सीटें जीत ली हैं और 15 पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 34 सीटों पर विजय हासिल की है और 7 पर आगे है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 16 सीटें जीती हैं, 4 पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर विजय हासिल की है और 5 पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने 6 सीटों पर विजय हासिल की है और 4 पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीत ली हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 23 सीटें जीती हैं, 11 पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटें जीती हैं, 6 सीटों पर आगे है। कांग्रेस ने 11 सीट जीत ली हैं और 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 सीटें जीती हैं और 2 पर आगे है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 2 सीटें जीत ली हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने 1-1 सीट जीती है। जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार 1 सीट पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान हुआ था। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। पहले चरण के चुनाव में इस महीने की 13 तारीख को 43 सीटों पर मतदान हुआ था। शेष 38 सीटों पर इसी महीने की 20 तारीख को वोट डाले गए थे। इन 2 राज्यों पर अगर चर्चा शुरू करें अशोक जी, महाराष्ट्र की बात करें, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद शायद महायुति को भी नहीं होगी। और अब मामला पहुंचा है कि सरकार बनाने का, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन चल रहा है। कैसे देखते हैं आप?
देखिए, अधिकांश एग्जिट पोल तो यही दिखा रहे थे कि महायुति की सरकार बनने जा रही है और स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। लेकिन ये आंकड़े आपने ठीक कहा कि ये इसकी उम्मीद शायद महायुति के नेताओं ने भी नहीं की थी, क्योंकि इतनी बड़ी जीत तो कभी हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भी कभी जीत इतनी नहीं हुई
जी।
और इसमें जो 2 चीजें तय होनी थी वो ये कि असली शिवसेना कौन है, वो भी शिंदे, एकनाथ शिंदे ने सिद्ध कर दिया, लगभग सिद्ध कर दिया। और इसी तरह से अजीत पवार ने भी सिद्ध कर दिया कि भाई भतीजा जो है वो सवासेर है। तो ये कुछ एक चीजें हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि ये अप्रत्याशित जीत है और इसके लिए श्रेय किसको दिया जाए ये अलग अलग है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने तो ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने श्रेय दिया है, और एकनाथ शिंदे अपनी नीतियों के बारे में बात कर रहे थे जो लाडली बहना वाला जो उन्होंने वहां चलाया। लेकिन कुल मिलाकर मेरा ऐसा मानना है कि इस सारे मामले में जो कांग्रेस पार्टी, जिसका लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और कुल मिलाकर अगर देखें तो इंडी गठबंधन का भी लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, तो ऐसा क्या हो गया कि ये स्थिति आई? मेरा व्यक्तिगत मामला है, मानना है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व की कमी थी
जी।
कोई नेता नहीं थे। आज पृथ्वीराज चौहान स्वयं हार गए हैं, और मुझे ध्यान नहीं कि नाना पटोले का क्या हुआ, लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस ने कई दशकों तक राज किया, आज वो नेतृत्वहीन हो गई है। और वो ये शिवसेना और NCP जैसी पार्टियों पर निर्भर हो गई है। तो एक राष्ट्रीय दल के तौर पर कांग्रेस की जो पहचान रहती थी, आज वो कुछ और दलों के बैसाखी पर चलकर जब चुनाव लड़ने चली है, तो ये कांग्रेस के नेतृत्व को आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि अगर उनको भाजपा का सही माने में राष्ट्रीय विकल्प बनना है तो अपने दम पर पार्टी का संगठन मजबूत करना पड़ेगा, वरना कभी ये RJD 4 सीट छोड़ेगी बिहार में, कभी ऐसे कल को दिल्ली में फिर से आप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे। इससे मुझे लगता है ये सबक कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको आगे कहां जाना है।
बिल्कुल पराशर साहब, अगर झारखंड के जो हाल है अगर उसको समझने की कोशिश करें आपसे, बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को नहीं भुला पाई, या फिर जैसा कि कहा कि लाड़की बहन योजना ने महाराष्ट्र में अहम भूमिका निभाई, वहां मैया योजना के सहारे जो हेमंत सोरेन है एक बार फिर वापसी करते नजर आए।
देखिए भारतीय लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी खूबी है कि महाराष्ट्र की हमने बात की तो एक बम्पर जीत महाजीत महायुति की होती दिखाई दे रही है, तो झारखंड में इंडी अलायंस की को अच्छी खासी जो एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं चला, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहें उनका कोई भी वादा नारा दावा जनता को पसंद नहीं आया। कई बार ये होता है कि कुछ नारे कुछ जुमले इस तरह के होते हैं कि एक राज्य में तो काम करते हैं, दो राज्य में काम करते हैं, किसी राज्य में नहीं काम करते, क्योंकि उस राज्य की सियासत की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब कहा तो ये जा रहा है कि भले ही सरकार नहीं भेजती किसी को जेल, प्रशासन भेजता है, हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में रहना पड़ा तो उसे देखते हुए सहानुभूति उनको जनजातीय वोटरों की खासतौर पर मिली। और जो एनडीए के जो वादे थे दावे थे या मुद्दे थे कहें सीधे सीधे तौर पर उनकी ओर वहां का वोटर आकर्षित नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर कहूंगा यही बात कि ये भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है कि कोई लहर हवा जैसी अब चलती हुई दिखाई नहीं देती, कोई मुद्दा किसी राज्य में काम करता है वही मुद्दा दूसरे राज्य में काम नहीं करता।
जी बिल्कुल, और झारखंड पर ही और विस्तार से चर्चा के लिए हम चलते हैं रांची में अपने संवाददाता के लाल के पास। लाल साहब स्वागत है आपसे आपका, और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब वहां सरकार बनाने को लेकर किस तरह की प्रक्रिया चल रही है। हमने देखा कि कुछ समय पहले हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या कहा उन्होंने और क्या चर्चा है?
जी मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निवास स्थान पे कल इंडिया ब्लॉक के विधायक दल।
लाल साहब आवाज मिल रही है आपको?
हाँ आवाज मिल रही, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो हेलो,
आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि
जी
हेमंत सोरेन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस तरह की बातें कही हैं और क्या कुछ सरकार बनने को लेकर अपडेट है?
कल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर इंडिया ब्लॉक के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, इसमें नेता का चयन किया जाएगा और इसके बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, और इसके बाद जो है हर एक दल के विधायक दल की अलग अलग बैठक होगी जिसमें विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। लेकिन कल मुख्यमंत्री के आवास पर 11 बजे की जो बैठक है वो काफी अहम है और उसी में दल के नेता का चयन होगा, इसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
थोड़ा और बताएं कि इस जीत को वहां की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किस तरह से देखा गया, चूंकि अब काउंटिंग लगभग समापन की तरफ है, और क्या एनालिसिस है दोनों तरफ से?
पहले ये बता दूं कि झारखंड राज्य के गठन के बाद ये पहली बार है कि जेएमएम के नेतृत्व में जो सरकार है दोबारा राज्य में सरकार सत्ता में लौटी है, ये खास बात है। और एक बात है कि जेएमएम का ग्राफ काफी बढ़ा है, 56 सीट लाई है 81 विधानसभा क्षेत्रों में, करीब 2/3 बहुमत है तो ये प्रचंड बहुमत है। और वहीं एनडीए का ग्राफ घट गया है, उनका जो है 24 पे वो सिमट जाएंगे। खास बात ये रही कि आरजेडी की संख्या भी 4 हुई है, कांग्रेस के सदस्यों की संख्या भी बढ़ करके 12 हुई है और सीपीआईएमएल के 2 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वहीं एनडीए में देखें तो आजसू के केवल 1 सीट जीते हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में माने 2000 पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें आजसू के 3 सदस्य थे। और एक खास बात यह है कि लोकतांत्रिक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के एक जयराम महतो हैं, उनकी भूमिका काफी अहम रही क्योंकि उनका महतो का वोट उन्होंने हर एक विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा किया।
जी, जी।
डुमरी से वो जयराम महतो खुद चुनाव जीते।
बिल्कुल लाल साहब,
इनका हर एक जगह से महतो का वोट कटा और चिल्ली विधानसभा क्षेत्र से सुदेश कुमार महतो चुनाव मैदान में थे
जी जी
वो भी हारे इनकी वजह से
जी।
तो एक जो जयराम महतो का फैक्टर जो था वो काफी अहम था
जी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे जुड़ेंगे। टंडन साहब, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी अगर थोड़ी चर्चा कर ली जाए, 9 सीटों पर वहां मतदान हुआ था, 7 पर जो एनडीए अलायंस है, 1 सीट पर अभी भी मतगणना जारी है कुंदरकी पर, 7 बनाम 2, कैसे देखते हैं?
देखिए, जब ये चुनाव हुए थे घोषित, तो उस समय बहुत बड़ी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, तो उसमें ब्लेम गेम चल रही थी कि ये क्यों हुआ। प्रधानमंत्री का स्वयं का भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मत प्रतिशत कम हुआ, तो ये एक चुनौती थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने पार्टी हाईकमांड को, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया, कि मुझे अगर फ्री हैंड दिया जाएगा उम्मीदवार चुनने में और चुनाव अभियान चलाने में, तो मैं आपको ये सीटें जीत के दिखाऊंगा। और शायद ऐसा केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास रखा और उम्मीदवारों का चयन उन पर छोड़ा। और हम जानते हैं कि कितने महीने पहले से इस चुनाव प्रचार के लिए योगी ने तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये जो उन्होंने चुनौती स्वीकार की और उसके लिए आज उन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं, तो मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व तो इस बात से प्रसन्न होगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है।
महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे। कुणाल, स्वागत है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर महायुति की तरफ से, उसमें क्या कुछ प्रमुख निकलकर सामने आया?
जी, इसमें तो खास जो ये हाईलाइट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये है कि जो भी एकनाथ शिंदे थे, फिर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इन्होंने ये जो भी 2-2.5 साल में जो भी काम किया है, जैसे डेवलपमेंटल वर्क किए हैं, और खासतौर पर इनका कहना है कि जो लाडली बहन स्कीम है, माझी लाडली बहन, तो ये खास तौर पे वुमेन्स के लिए थी। इसमें 1,500 रुपया सरकार जो औरतें हैं उनके बैंक अकाउंट में जमा कर रही है, और साथ ही 2100 रुपया अभी जो मैनिफेस्टो में भी उन्होंने मेंशन किया है कि 2100 रुपया वो लोग जब फिर से चुन के आएंगे तो देने वाले हैं। तो ये स्कीम का बहुत बड़ा, अजीत पवार ने तो स्ट्रेट अवे कह दिया कि ये तो गेम चेंजर रहा है। और साथ ही जो भी कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट हुआ है, अटल सेतु हुआ है, जो भी अच्छे अच्छे जैसे वाडवन बंदर का भी है, तो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुआ है उसके ऊपर उन्होंने खास जोर दिया और कहा कि इस काम, उनके काम के वजह से लोगों ने उनको चुन के दिया है। बाकी जो भी ऑपोजिशन का कहना था, जो ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही थी लाडली बहन स्कीम के लिए कि एक्सेस खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट, इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये है, तो जो क्रिटिसिज्म जो हुआ है ऑपोजिशन की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ, तो ये लोगों ने पसंद नहीं किया है। और उसी के नतीजे गवर्नमेंट को ये, मतलब जो महायुति है उनको ये इतना अच्छा मैंडेट मिला है। और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने जब उनको जब पूछा गया कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा या चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या है आपकी राय क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि पहले तो जो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग्स होगी रिस्पेक्टिव पार्टीज की, जैसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, एनसीपी की और बीजेपी की,
जी जी,
उसके बाद जी कुणाल डिसीजन पे आएंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा। हालांकि ये भी कहा जाता है,
बिल्कुल इस कॉन्फ्रेंस पर और भी विस्तार से आपसे अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासन साहब, समय बहुत कम है, एक बहुत संक्षेप में कमेंट अगर महाराष्ट्र पर आप करें।
मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल और केवल सरकारी योजनाओं के बूते इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो वोट फेवर में महायुति के पड़ा है, बंपर वोट पड़ा है, वो समाज की एक प्रतिक्रिया भी है। ऐसी खबरें आ रही थी कि मुस्लिम वोटरों को ध्रुवीकरण करने के लिए उलेमा और 400 एनजीओ काम कर रहे थे, तो उसकी बड़ी स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती हुई दिखती है। और यही वजह है कि कांग्रेस वहां पर महाराष्ट्र में अब तक की सबसे कम सीटों तक पहुंच गई।
पराशर साहब आपका और टंडन साहब आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के परिणामों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com